आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
सिर्फ दो दिन पहले 15 मार्च को एक महान लेखक डॉक्टर राही मासूम रजा की पुण्यतिथि थी। उनका जन्म 1 सितंबर 1927 को जनपद गाजीपुर के गंगौली गांव में हुआ था और 15 मार्च 1992 को उनका देहांत हो गया था। एक ऐसा कलम का जादूगर जिसने फिल्म की दुनिया में बहुत नाम कमाया, जो आया तो एक शायर की तरह लेकिन उसकी शोहरत एक स्क्रिप्ट राइटर की तरह हुई। मैं तुलसी तेरे आंगन की इस फिल्म की पटकथा के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। भारत सरकार ने भी उन्हें पद्म अवार्ड से सम्मानित किया। उनके द्वारा लिखा गया महाभारत धारावाहिक आज भी भारतीय टेलीविजन का एक मील का पत्थर माना जाता है। बताते हैं कि जब वो महाभारत के लिए लेखन कर रहे थे तो उनके पास बहुत से पत्र आए जिनमें मुस्लिम कट्टरपंथियों ने उनको अपशब्द लिखे थे, लेकिन वो नहीं डिगे। महाभारत के संवाद ने उन्हें घर घर पहचान दिलाई। उन्होंने सबसे पहले KP आत्मा की मेहमान, इसके बाद परछाइयाँ, रास्ते का पत्थर, बिंदिया और बंदूक, पत्थर और पायल, प्रेम कहानी, सगीना, मिली, बैराग और अलाप जैसी फिल्में कपटकथा लिखी है। राही कहते थे कि मैं तीन माओं का बेटा हूँ, नफीसा बेगम जो जिन्होंने उनको जन्म दिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जहाँ उन्होंने पढ़ाई की और नौकरी भी की, और गंगा जिसकी गोद में वो पले बढ़े। 11 साल की उम्र में उन्हें TB हो गई। उस जमाने में TB का कोई इलाज नहीं था। बीमारी के बीच उन्होंने घर में रखी सारी किताबें पढ़ डाली। उनका दिल बहलाने और उन्हें कहानी सुनाने के लिए कल्लू काका को उनके पास रखा गया था। राही खुद मानते थे कि अगर कल्लू काका नहीं होते तो वो कहीं कोई कहानी नहीं लिख पाते। बाद में राही कम्युनिस्ट पार्टी में थे और इनके पिता कांग्रेस में थे। गाजीपुर से वो एक चुनाव लड़ रहे थे। राही ने उनका विरोध किया और चुनाव भी हरा दिया। राही हमेशा सांप्रदायिकता, जातिवाद और तमाम सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लिखते रहे। लखनऊ में भी इनके चाहने वालों ने डॉक्टर राही मासूम रजा एकेडमी की स्थापना की है। लेखक हफीज किदवाई, जो इस एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वे राही के प्रारंभिक दिनों के बारे में बताते हैं।
बिल्कुल, देखिए, इन डॉक्टर राही मासूम रजा जो थे वो उत्तर प्रदेश का एक गांव था, एक जिला है गाजीपुर, उसमें एक गांव है गंगौली। तो गंगौली के एक बड़े जमींदार परिवार में 1 अगस्त 1927 को उनका जन्म हुआ। अच्छा, जो गंगौली है वो बहुत मिली जुली तहजीब का है, वहाँ शिया बहुत हैं, वहाँ सुन्नी भी हैं, वहाँ हिंदू भी हैं बहुत, मतलब ये एक तरीके से ब्राह्मण भी हैं और दलित भी हैं। इस पूरे माहौल को जो राही मासूम रजा ने देखा गंगौली में पैदा होकर के, वो उनकी पूरी ज़िंदगी हमेशा साथ रहा। और क्योंकि गंगा के किनारे था गाजीपुर, तो वो हमेशा ये बात कहते थे कि हम तो तीन माओं की औलाद हैं। हम लोग, उनकी माँ का नाम नफीसा बेगम था, तो कहते थे मैं तीन माओं की औलाद हूँ, एक नफीसा बेगम, एक गंगा, दूसरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU, मैं इन तीन से पैदा हुआ हूँ। तो इस तरीके का मतलब, और ये हम जब कभी पीछे जाके ख्याल करते हैं कि इतना बड़ा काम, इतना कुछ लिखने वाला, भाई 300 फिल्मों की करीब उन्होंने इसके पैटिंग की है, डायलॉग लिखे हैं, तो सोचिए इसकी बुनियाद कैसे पड़ी। तो जब आप गंगौली को देखिए, गाजीपुर को देखिए, तो आपको एहसास होगा कि हाँ, यहीं से कोई जो इस पूरी ज़मीन को जो पूरा जज्ब करके निकला होगा वो राही ही बनेगा।
राही का नॉवेल आधा गांव इतना प्रसिद्ध हुआ कि आज तक वो बेस्ट नॉवेल में से एक गिना जाता है। ये उन्होंने लिखा हिंदी में नहीं था, लेकिन ये छपा पहली बार हिंदी में। इसमें उन्होंने बहुत कुछ अपने गांव की पृष्ठभूमि दिखाई है।
देखिए, एक बहुत बड़े नाम, आप राही मासूम रजा को ऐसे कह सकते हैं, देखिए फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से शायर आए, भाई साहिर आए, कैफी आए, लेकिन ये सब बतौर शायर बहुत मशहूर हुए, बतौर लिरिक्स राइटर बहुत मशहूर हुए। एक लौता नाम पूरी फिल्म इंडस्ट्री में जो बतौर शायर दाखिल होता है, डॉक्टर राही मासूम रजा हैं, और जो बतौर स्क्रिप्ट राइटर बहुत बड़े मशहूर होते हैं, मतलब उनकी शायरी पीछे छूट जाती है, वो बहुत बड़े नावल निगार, बहुत बड़े स्क्रिप्ट राइटर इसमें बहुत मशहूर होते हैं। तो ये राही की बहुत खासियत है। अच्छा, जिस भाई वो शुरुआत तो अपनी शेर व शायरी से करते हैं, उन्होंने मतलब 1945 में ही सन 45 में एक तो उन्होंने प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन ज्वाइन किया था, 45 से 66 तक की उन्होंने बहुत सी पोएट्री लिखी है, नया साल, मौजे गुल, मौजे सबा, रक्से मैं, अजनबी शहर, अजनबी रास्ते, इस तरह की बहुत मशहूर मतलब उनके जो हैं काव्य संग्रह हैं जो चले। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने प्रोज लिखना शुरू किया और जब नावल लिखना शुरू किया तो नावल में तो उन्होंने धूम मचा करके रख दी। जब उनका नावल आधा गांव आया, आधा गांव एक्चुअल में जो गंगोली का उनका जो कल्चरल पॉलिटिकल और सोशल जो नज़रिया है देखने का अपने गांव को, आधा गांव में उन्होंने वो लिखा है। और वो जिस वक्त आया वो लिखा उन्होंने फारसी में था, फिर वो चाहते ख्वाहिश थी कि इसे उर्दू में छपे, लेकिन उर्दू वालों ने बहुत मतलब उनके साथ एक पॉलिटिक्स चल रही थी, तो इसे पहले सबसे पहले हिंदी में छापा गया और कमलेश्वर ने इसे अपने प्रेस से छापा। उसके बहुत बाद ये उर्दू में आया, फिर दुनिया का बहुत मकबूल नावल, ये कहा जा सकता है कि अगर हर साल नावल की जो लिस्ट बनती है उसमें टॉप 10 में आधा गांव रहता ही रहता है। तो एक तरीके से आधा गांव को आप उनका वो कह सकते हैं कि हाँ जिसने दुनिया को खींचा उनकी तरफ की एक बहुत बड़े नावल निगार हैं, बहुत बड़े नावलिस्ट हैं, वो आधा गांव से शुरू होता है, वरना पोएट्री तो उनकी बहुत पहले से चल रही थी।
डॉक्टर राही मासूम रजा घर घर तक पहुंचे महाभारत सीरियल से, उसमें समय के द्वारा सब कुछ कहना इन्हीं का कॉन्सेप्ट था, आज भी महाभारत सीरियल के डायलॉग लोगों के जुबान पर हैं।
देखिए लिखने को तो क्योंकि वो आदमी भाई अच्छा, इनकी जो पीएचडी है वो पीएचडी है तिलिस्मे वश्रुबा पर के वो जो दास्तान है तिलिस्मे वश्रुबा उसका जो हिंदुस्तानी पहलू है, मतलब उनका ये कहना है, राही का ये कहना कि जो हिंदुस्तान है हमारा, जो हमारा कल्चर है वो पूरी दास्तान में हर जगह पर मौजूद है, इसलिए इसे हिंदुस्तानी दास्तान कहना चाहिए। तो अपने कल्चर को इतना ज़्यादा मानने वाला समझने वाला शख्स तो थे, तो अब ये हुआ कि भाई जो आदमी इतना समझता है वो अच्छा महाभारत पे बहुत अच्छी बातचीत भी कर लेते थे क्योंकि आदमी तो समझदार थे ही। तो जब उनसे कहा गया कि भाई आप लिखिए, तो एक एतराज़ आया कि शुरू शुरू में ही कि भाई आप तो महाभारत बहुत पढ़े वाले नहीं होंगे, थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, तो आप नहीं लिखेंगे, कोई और लिख देगा, ये यश चोपड़ा शायद हमें बी आर चोपड़ा क्या बी आर चोपड़ा शायद इसके होते डायरेक्टर। तो राही ने कहा कि नहीं हम ही लिखेंगे इसे। फिर क्या हुआ, जब लिखना शुरू किया तो उनके ऊपर खत आने लगे भाई कट्टरपंथियों के, और एक नहीं राही मासूम रजा को हिंदू कट्टरपंथी और मुस्लिम कट्टरपंथी दोनों खत भेजते थे, दोनों उसमें गाली गलौज लिखते थे, बहुत लिखते थे कि तुम वो हिंदू लिखते थे कि तुम कौन होते हो हमारे ग्रंथों के बारे में लिखने वाले, और मुसलमान में कहते थे कि भैया तुम इनका लिख रहे हो तो तुम मुसलमान क्यों हो, इस तरीके के खत आते थे। तो जब पहले कह रहे थे राही कि जब हमने थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया कि भैया अब हमको ये करना है, हमारा मन भी उचाट हो गया था कि नहीं करेंगे, लेकिन जब ये खत आए लोगों के धमकी भरे गाली देने वाले और तरह तरह के, तो उसका पूरा गट्ठर जब हमको बी आर चोपड़ा ने ला के दिया, तो हमने उसे पढ़ने के बाद हमने कहा कि अब तो इसे हम ही लिखेंगे और कोई नहीं लिखेगा। तो हमने उनसे तय कर लिया कि ये महाभारत का जो डायलॉग है वो हम ही लिखेंगे। और बी आर चोपड़ा तो कहते हैं डायलॉग लिखते वक्त डॉक्टर राही मासूम रजा वेद व्यास जैसे हो गए थे, मतलब उन्होंने उनको याद कर लिया था। आप देखिए जब कभी महाभारत देखिए तो महाभारत में एक तो कहानी चलती, एक होता है समय, मैं समय हूँ ऐसे करके बोलता है, वो राही की अपनी सोच थी। हुआ क्या था, राही अपनी बीवी के सो रहे थे कमरे में, तो उनकी बहुत सुबह उठने की आदत थी अलार्म जगह लगा करके, तो एक दिन अलार्म लगाना भूल जाते हैं, वक्त से पहले थोड़ा उठ जाती है, आँख खुल जाती है, तो वो एकदम से उठते हैं और रात हुई होती है अंधेरा, तो लिखने बैठ जाते हैं, तब बीवी कहते हैं अभी तो टाइम नहीं हुआ है, तो तब वो समय वहां से वो कहते हैं कि ये भाई जो समय लिखने का हमने तय किया था ये उससे पहले हम जाग गए, इसका मतलब ये समय है जो महाभारत को और ये जमीन को इस चीजों को समझने के लिए। फिर वो एक पूरा कंसेप्ट अपने सीरियल में समय का डालते हैं, जिसमें राही खुद बोलते हैं, राही का जो खुद ख्याल है, जो खुद पूरी भगवान श्री कृष्ण और जो उनकी फिलॉसफी है गीता की और जो महाभारत की, वो सारा समय के माध्यम से वो कहना शुरू करते हैं। इस तरीके से राही महाभारत को लिखते हुए बहुत बड़ा कद हो जाते हैं। फिर राही एक बात ये कहते हैं कि आए तो थे खत जरूर गाली गलौज ये सब चीज़ों के, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे लिए तारीफ के और लोगों ने हमें बहुत अप्रिशिएट किया, वो खत ज़्यादा थे हमारे। तो ये है कि भाई आदमी कहते हैं हम लोग यहाँ उनको ये चीज़ पे गाली पड़ी, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि उनको इससे बहुत ज़्यादा नाम हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों ने उनका स्वागत किया, और फिर राही का नाम महाभारत के साथ जुड़ गया, हर आदमी उसको जानता है महसूस करता है।
डॉक्टर राही के कुछ अन्य पुस्तकों के बारे में जिसमें इन्होंने सांप्रदायिकता, जातिवाद, इमरजेंसी इत्यादि पर लिखा है,
तो उसमें इनके एक राही के दोस्त थे कुंवर पाल सिंह, जिन्होंने सबसे पहले आधा गांव छपवाई थी, फिर राही का सारा काम जो कलेक्ट करके जो छपाया है वो उन्होंने, जैसे उनकी किताबें थी नहीं कि 1857 पे राही का बहुत बड़ा काम है, उन्होंने एक बहुत बड़ा खंड काव्य लिखा था, तो उसको छपवाना क्रांति कथा के नाम से, फिर लगता है बेकार गए हम, खुदा हाफिज कहने का मोह, सिनेमा समाज शायद, इस तरह की बहुत सी किताबें कुंवर पाल सिंह ने इनकी, जब ये अलीगढ़ में थे तो कुंवर पाल सिंह के साथ रहते थे तो उन्होंने छपाई, तो वो हमारी एकेडमी के पैटर्न थे। लेकिन इनके तीन चार नावल तो हम इसलिए जरूर नाम लेंगे, कहना चाहेंगे सारे लोग इसे समझिए कि राही, देखिए राही क्या थे, राही जमाने को बहुत अच्छे से समझते थे और हिंदू मुस्लिम एकता और सांप्रदायिकता के खिलाफ राही ने जितना काम किया है शायद ही किसी ने किया होगा, और अपने नावल के माध्यम से। तो इन्होंने एक नावल लिखा टोपी शुक्ला जो 1968 में आया, उन्होंने मिडिल क्लास और जो जातियों का जो वर्चस्व है और जातियों का जो और धार्मिक गठजोड़ है इन सब पे उन्होंने उस नावल में बहुत अच्छा लिखा। फिर एक आया हिम्मत जौनपुरी जो पूरा जाति प्रथा के ऊपर उनका कटाक्ष है और पूरा उसको लेते हुए अपने उत्तर भारत की जो कहानियां हैं उसको उन्होंने समेटा है कि मुसलमानों में कैसे असामाजिकता वो असमानता है जबकि वो इतने एक समान रहने वाले लोग हैं, लेकिन उनमें उनके अंदर देखिए बुनियादी क्या फ़र्क है, शेख सैयद पठान में क्या अंतर है। फिर ओस की बूंद इनका एक नावल है बहुत मशहूर, ओस की बूंद तो बहुत ही मशहूर है कि हाँ उसके अंदर उन्होंने बहुत सी सांप्रदायिकता और राजनीति इस पर बहुत अच्छा कटाक्ष किया है। दिल एक सादा कागज इनका बहुत अच्छा नावल है। सीन 75 एक है जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर उनका लिखा हुआ नावल है, उस नावल के अंदर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की सारी कहानियां अच्छी बुरी दोनों को इस्तेमाल करते हुए लिखा है, और जिस नावल को उनके सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली वो थी कटरा भी आरज़ू जो 1978 में आया, ये इमरजेंसी के ऊपर नावल था। इमरजेंसी में तो राही कहते हैं, राही का खुद का कॉल है, रोशनाई के लिए अपने को बेचा किए हम ताकि सिर्फ इसलिए कुछ लिखने में बाकी ना रहे कि कल खुश कलम खुश थे और लिखने से मजबूर थे हम, इसको नावल को उन्होंने शुरू करते हुए लिखा है 75 में, क्योंकि इमरजेंसी में लिखने में बड़ी पाबंदी थी तो इसके ऊपर पूरा फोकस ये नावल है। और जब उन्होंने इंदिरा गांधी के ऊपर भी बड़ा कटाक्ष किया, लेकिन जब इंदिरा गांधी का हत्या होती है तो असंतोष के दिन के नाम से 1986 में एक नावल लिखते हैं जिसमें वो सिख सांप्रदायिकता जब बढ़ रही उसके ऊपर कटाक्ष करते हैं। इस तरीके से राही ने अपने नावल के माध्यम से हिंदुओं की सांप्रदायिकता, मुसलमानों की सांप्रदायिकता, सिखों की सांप्रदायिकता, यानी धार्मिक सांप्रदायिकता, जातीय भेदभाव और समाज में जो उछल पुरल, गरीब अमीर का जो मसले, इन सबको अपने नावल से बहुत वो किया। और एक नावल जो उनसे लिखवाई गई वो थी वीर अब्दुल हमीद के ऊपर जो बहुत मशहूर हुई। क्या हुआ था कि वो जो 65 की जंग में जो वीर अब्दुल हमीद का जो बहुत बड़ा रोल है, और वो भी वहीं गाजीपुर के थे, इन्हीं के गाँव के, तो छोटे आदमी की बड़ी कहानी के नाम से उन्होंने एक नावल लिखी थी और इसको लिख करके लाखों प्रतियां ये बांटी गई थी लोगों के बीच में ताकि लोग समझें कि वीर अब्दुल हमीद की, परमवीर चक्रवीर अब्दुल हमीद का क्या योगदान था इस देश के मान सम्मान को बचाने में, सरहद को बचाने में। तो ये एक राही का पूरा कुल जमा काम बहुत बड़ा था जो उन्होंने सांप्रदायिकता, देशभक्ति और आपसी प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा, इस पे बड़ा काम किया अपने नावल के माध्यम से।
खुद डॉक्टर राही मासूम रजा का एक शेर है, जिनसे हम छूट गए अब वो जहां कैसे हैं, शाखे गुल कैसी है, खुशबू के मकां कैसे हैं, शायद आज के हालात पर बिल्कुल सटीक है। लखनऊ से फैसल फरीद।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।